कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज हम अपने बाइबल अध्ययन में पहला राजा नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस पुस्तक में राजा दाऊद के जीवन के अंतिम दिन और सुलेमान का राज्य करना दर्शाया गया है। इससे पहले कि हम अध्ययन आरंभ करें, आइए सुन लेते हैं एक मधुर गीत।
प्रभु ख्रीस्त मेरे स्वामी मन के, प्रभु ख्रीस्त मेरे स्वामी मन के, तुम प्रेम मिलन को आ जाओ, मैं भटका राही जीवन में, मैं भटका
मित्र। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं अपने उन नए श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूँ जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम सब पहले राजाओं की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि सुलेमान के राज्य के साथ साथ इस्राएल राज्य की एकता का भी अंत हुआ और राज्य दो भागों में बट गया, उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य। उत्तरी राज्य का राजा यारोबाम और दक्षिणी राज्य का राजा रहुबियाम हुए। विभाजन का एक कारण यह भी था कि रहुबियाम ने मूर्खता भरा निर्णय लिया और प्रजा का दिल तोड़ दिया। आज हम अध्याय 13 में यारोबाम की झूठी वेदी के विरुद्ध परमेश्वर का दंड और परमेश्वर के भक्त के साथ एक अनजान भविष्यद्वक्ता द्वारा छल को देखेंगे। लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए, उनके जीवन के लिए और उन तमाम आशीषों के लिए जिसे अब तक आपने उनके जीवन में जोड़ा है। इस समय जब हम आपके जीवित वचन का अध्ययन करना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन का अध्ययन करें तो आपका वचन प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। पिता परमेश्वर आप उनके जीवन की हर एक बातों को जानते हैं, आप उनकी सहायता करें, मदद करें, ताकि एक एक जीवन आपके प्रेम के उन गंभीर बातों को समझ सके, अपने जीवन में उतार सके। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो इस समय निराश बैठे हुए हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं बीमारी से और अन्य बातों को लेकर के। प्रभु आप उन्हें भी सहायता प्रदान करें, अपनी महिमा उनके जीवन से ले। आज प्रत्येक ये जानने पाए कि आप सबसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं और इस समय आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक की सहायता करें। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, यरोबाम के विद्रोह के कारण राज्य का विभाजन हो गया था और यरोबाम ने 10 गोत्रों के साथ इसराइल राज्य को बना दिया। रहुबियाम में न तो पिता के सदृश बुद्धि थी और न ही कूटनीति, वही राज्य के विभाजन का उत्तरदायी भी ठहरा। उत्तरी राज्य इसराइल अंततः अशुरों द्वारा दास बनाकर ले जाया जाएगा और दक्षिणी राज्य यहूदा बेबीलोन के द्वारा ले जाया जाएगा। मेरे मित्रों, इस वृतांत को पढ़ने में बड़ी उलझन पैदा होगी। अब आप एक के बाद एक राजा बदलते हुए देखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि राजाओं की वंशावली उत्तरी राज्य की है या दक्षिणी राज्य की, और वह अच्छा राजा है या बुरा राजा। इसके लिए आपको हमसे काल क्रम की तालिका मंगवानी होगी। जब मैं अध्ययन कर रहा था और नया नया गया हुआ था बाइबल कॉलेज में, तब मैंने एक बाइबल पाठ्यक्रम को चुना जो बच्चों का सा था। कक्षा में प्रायः पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न उसमें थे। एक प्रश्न था, इसराइल के और यहूदा के राजाओं के नाम बताते हुए उनका संक्षिप्त विवरण दें। किसी विद्यार्थी ने वर्षों के बाद एक खोज की थी कि यदि वह राजाओं के नाम याद कर ले और उनके नाम के सामने बुरा राजा लिख दे तो वह 95% सही होगा। इससे अच्छा एक नया विद्यार्थी और क्या कर पाएगा। सबने ऐसा ही किया। आप स्वयं देखेंगे कि उत्तरी राज्य का प्रत्येक राजा बुरा था, एक भी अच्छा राजा नहीं था। दक्षिणी राज्य में 200 वर्ष से अधिक समय में केवल 8 राजा अच्छे थे, शेष सब बुरे थे। इसराइल के इतिहास में यह एक काला धब्बा था। तथापि मेरे विचार में अन्य राज्यों में भी आपको ऐसा ही सूची देखने को मिलेगी। परंतु इसराइल के लिए अंधकार भरे इतिहास का कारण था कि उन्हें स्वर्ग से ज्योति प्राप्त थी, उन्हें परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त था, इसलिए उनका उत्तरदायित्व अधिक था। मेरे मित्रों, मैं राज्य के विभाजन के कारण को खोजते हुए सुलेमान पर ध्यान करना चाहता हूँ। सुलेमान को परमेश्वर ने राज्य करने के लिए विशेष बुद्धि दी थी, तथापि वह बुद्धि उसके व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाई। सुलेमान में आत्मिक बुद्धि या विवेक नहीं था, वह निश्चय ही कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं धारणाएं समझ गया था जिनके कारण वह एक बुद्धिमान राजा बनने में सक्षम हुआ। परंतु उसके व्यक्तिगत, निजी और विशेष करके उसके आत्मिक जीवन में इनका प्रवेश निश्चय ही नहीं हुआ था। मित्रों, आप उसके राज्य के आरंभ में ही देख पाएंगे कि उसने झूठे धर्मों से नाता नहीं तोड़ा था। सिंहासन पर बैठते ही वहां मूर्ति पूजा थी जिसे उसने रोका नहीं, अपनी आंखें उस ओर से बंद कर रखी। उसने उसके विरुद्ध कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। दूसरी ओर वह समृद्धि के प्रतीकों में व्यस्त हो गया। उसने बंदर और मोर लाने के लिए जहाज भेजे। बंदरों और मोर के साथ कोई बुराई नहीं थी, परंतु जब आप परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं तो ऐसी लालसा ठीक नहीं। आपको उसकी गवाही का जीवन जीना है। सुलेमान में निश्चय ही दुर्बलता थी। मेरे मित्रों, नीति वचन में उसकी बुद्धि प्रकट तो है, सबोपदेशक में उसकी मूर्खता भी है। इतिहास की पुस्तकों में आप न तो दाऊद की और न ही सुलेमान की चूक का उल्लेख पाएंगे। इतिहास की दोनों पुस्तकें और राजाओं की दोनों पुस्तकें एक ही परिदृश्य प्रदान करती हैं। उनमें अंतर केवल यह है कि राजाओं की पुस्तकों में मनुष्य की समझ निहित है, जो इतिहास की पुस्तकों में परमेश्वर का दृष्टिकोण। परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा किया और उसका पाप धो दिया। परमेश्वर के दृष्टिकोण से लिखी इतिहास की पुस्तकों में पाप का उल्लेख नहीं है, परंतु राजाओं की पुस्तकों में परमेश्वर ने पाप का उल्लेख इसलिए किया कि मनुष्य उसे देखे। इसी प्रकार परमेश्वर ने सुलेमान की चूक क्षमा की और इतिहास की पुस्तकों में उसके पापों का उल्लेख नहीं है। राजाओं की पुस्तक में हम सुलेमान की दुर्बलताओं को देखते हैं। उसने पत्नियां बढ़ानी आरंभ कर दी थी। परमेश्वर बहुपत्नी अभ्यास को मान्यता नहीं देता है। वह सुलेमान से अति क्रोधित हुआ। मेरे मित्रों, रोचक बात तो यह है कि अनैतिकता और झूठे धर्म एक साथ चलते हैं। यूहन्ना ने अपनी पत्री में विश्वासियों को यह स्पष्ट समझाया है। पहला यूहन्ना की पत्री 1:6 में, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। धोखा ना खाओ, आप पाप में रहकर न तो परमेश्वर से सहभागिता रख सकते हैं और न ही उसकी सेवा कर सकते हैं। आप केवल मनुष्यों को मूर्ख बना सकते हैं। दुख की बात तो यह है कि आज हमारे मसीही अगुए पाप में जी रहे हैं। सिद्ध हो चुका है कि वे अनैतिक हैं, परंतु मनुष्य फिर भी उन्हें सहयोग दे रहे हैं। मैं कभी नहीं समझ पाया कि क्यों ऐसा हो रहा है। वे परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। मेरे मित्रों, निश्चय ही उनकी सहभागिता परमेश्वर के साथ नहीं है। सुलेमान एक महान विफल मनुष्य था। धर्मशास्त्र में 2 असीम क्षमता और अवसर प्राप्त मनुष्य हुए हैं। एक शिमशोन था और दूसरा सुलेमान। दोनों ही ने परमेश्वर को दुखद विफलता प्रदान की। सबोपदेशक 2:17 में सुलेमान ने कहा, इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ना है। सुलेमान की महिमा नाशवान थी। हमारे प्रभु यीशु ने कहा था कि सुलेमान अपने संपूर्ण वैभव में शोषण के उस फूल के समान भी नहीं था जिसे अनदेखा किया जाता है। मित्रों, क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि सांसारिक धन संपदा और उपलब्धियां भी नाशवान महिमा है? मैंने यहां सुलेमान की पृष्ठभूमि समझाई है और मेरे विचार में तो मैंने उसके दफन का संदेश सुना दिया है। अब हम विभाजित राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण सुलेमान का पाप था। मित्रों, हम देखते हैं यरोबाम की वेदियों के लिए भविष्यवाणी। अधिक समय न लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यह इतिहास है। यहां 2 राज्य होंगे जो या तो आगे या पीछे होंगे, या साथ साथ होंगे, या एक दूसरे को अतिछादित करेंगे। यरोबाम तो उत्तरी राज्य की राजगद्दी पर बैठा। उसे परमेश्वर की सेवा का पूर्ण अवसर दिया गया था, परंतु उसे भय था कि उसकी प्रजा परमेश्वर की आराधना के लिए यरूशलेम जाएगी, जिसके कारण विभाजित राज्य फिर एक हो जाएगा, जो वह नहीं चाहता था। अतः उसने अपनी प्रजा की आराधना के लिए बेतेल और सामरिया में 1-1 सोने का बछड़ा स्थापित कर दिया। आइए हम पढ़ेंगे पहले राजाओं की पुस्तक 13:1-2। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा कि वेदी, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशियाह नाम एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याचकों को जो मुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। मेरे मित्रों, यहां मैं एक पल यह कहना चाहता हूं कि यह बड़ी ही रोचक बात है कि वह लगभग 300 वर्षों बाद यशिया इसराइल पर राज्य करेगा, परंतु परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने उसका नाम अभी ही बता दिया। वह एक अच्छा राजा था और उसने 31 वर्ष राज्य किया। यशिया ने राजाओं के इतिहास के 5 धर्म सुधारों में से एक धर्म सुधार किया। इन धर्म सुधारों के बारे में हम इतिहास की पुस्तकों में पढ़ेंगे, क्योंकि इनका उल्लेख राजाओं की पुस्तकों में नहीं किया गया है। मेरे मित्रों, इतिहास की पुस्तकों में परमेश्वर का दृष्टिकोण व्यक्त है। धर्म सुधार तो परमेश्वर की ओर से ही होते हैं। मनुष्य संख्या में रुचि रखता है, परंतु मन परिवर्तन जानना उसके लिए संभव नहीं है। परमेश्वर मन को जांचता और जानता है कि सच्चा सुधार हुआ है या नहीं। मेरे मित्रों, परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने वेदी के विरुद्ध भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर एक ऐसे मनुष्य को खड़ा करेगा जो उन वेदियों को नष्ट कर देगा और उसका नाम योशिय्याह था। आइए हम पढ़ें पहले राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय उसके 3 और 4 पद में। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया कि यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच न सका। मेरे मित्रों, जब परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने भविष्यद्वाणी की, तब यरोबाम वेदी पर धूप जला रहा था, अर्थात सोने के बछड़े के लिए बलि चढ़ा रहा था। जब परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने कहना बंद किया, तब यरोबाम ने उस पर हाथ उठाया। वह कह रहा था कि उसे पकड़ो, उसे घात किया जाए। उसका हाथ तुरंत सूख गया, उसे लकवा मार गया। हम पहले राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय उसके 5 से 7 पद में पढ़ते हैं, और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई, सो वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, राजा के स्वर में तुरंत नम्रता आ गई और उसने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता से विनती की कि वह परमेश्वर से प्रार्थना करे कि उसका हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। राजा का हाथ चंगा हो गया। आभार व्यक्त करने के लिए वह भविष्यद्वक्ता को घर ले जाकर दान देना चाहता था। हम आगे पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय उसके 8 से 10 पद में। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर न चलूंगा, और इस स्थान में मैं न तो रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यूं आज्ञा मिली है कि न तो रोटी खाना और न पानी पीना और न उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इसलिए वह उस मार्ग से जिसे बेतेल को गया था न लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वह भविष्यद्वक्ता दुष्टता और मूर्ति पूजा से समझौता करने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं था। यह बड़ी ही अद्भुत बात है, परंतु यह दुख की बात है कि आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन इस प्रकार के समझौते में पीछे नहीं हटते हैं। मित्रों, यहां यह कहना उचित होगा कि रूढ़िवादी मसीहियों में दुचित्ता बातें और स्वांग की बहुतायत है। मैंने हाल ही में एक रूढ़िवादी लेख पढ़ा। यह रूढ़िवादी स्कूल के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहती थी। मैंने ऐसे दुचित्ते बातें पहले कभी नहीं पढ़ी थी। मेरे मित्रों, वह महापवित्रता और ज्ञान की अति का दावा कर रही है। यह परमेश्वर की बातों के इनकार से बढ़कर और कुछ नहीं है। आज मसीही क्षेत्र में ऐसा समझौता है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि हम कुरूप और भद्दे स्वभाव के हो जाएं या किसी मनुष्य विशेष से बात न करें या संगति न रखें, परंतु मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमें जो आवश्यक है वह यह है कि हम अपनी ज्ञान स्पष्ट व्यक्त करें जो परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके। मेरे मित्रों, अनेक विश्वासी उन संस्थाओं में सहयोग देते हैं जिनके विषय उन्हें कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं है। वे दोष रहित हैं या नहीं, आपको सोचना है। यदि आपको आश्वासन नहीं कि कोई सेवा परमेश्वर का वचन सुना रही है या नहीं, तो आप उसे परखें। यह अति महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने आर्थिक निवेश का उत्तरदायी ठहराएगा। मेरे प्रियो, यरोबाम का युग दुष्टता से पूर्ण था। यह भविष्यद्वक्ता राजा के घर भोजन नहीं करेगा। उसने उसकी संगति से स्पष्ट इनकार कर दिया। तथापि अगले पदों में हम देखेंगे कि वह अन्य किसी भविष्यद्वक्ता द्वारा परमेश्वर की आवज्ञा करने में छला गया और इसका परिणाम बहुत दुखदायी हुआ। यद्यपि वह एक मूर्ति पूजक राजा की संगति से प्रसन्न नहीं था, वह एक एक ऐसे मनुष्य द्वारा छला गया जो परमेश्वर के निर्देश पाने का दावा कर रहा था। मेरे मित्रों, आज जब परमेश्वर की कलीसिया सांसारिक बातों में व्यस्त हो जाती है और हर प्रकार का समझौता करने को तैयार हो जाती है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की नाक के लिए वह दुर्गंध हो जाती है। हमारा युग बहुत अधिक यरोबाम के युग का सा है, अतः हमें वैसी ही सतर्कता और विवेक की आवश्यकता है। विवेक को काम लेना है जिसकी उस समय परमेश्वर के उस भविष्यवक्ता को आवश्यकता थी। आप सोचते होंगे कि यरोबाम को उस भविष्यवक्ता के साथ जो अनुभव हुआ उससे उसका जीवन बदल गया होगा, उसका हाथ सूख गया था और फिर चंगा हुआ। आपके विचार में क्या उसका मन परिवर्तन हुआ? पहले राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय उसके 33 और 34 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसके बाद यरोबाम अपनी बुरी चाल से न फिरा, उसने फिर सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक बनाए, वरन जो कोई चाहता था उसका संस्कार करके वह उसको ऊंचे स्थानों का याजक होने को ठहरा देता था, और यह बात यरोबाम के घराने का पाप ठहरी, इस कारण उसका विनाश हुआ और वह धरती पर से नाश किया गया। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यरोबाम के जीवन में एक मौका मिला, फिर भी वह परमेश्वर के निकटता में नहीं आया, उसके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। आज हम में से बहुतों के जीवन में भी परमेश्वर कार्य करता है, परंतु हम अपने जीवन में परिवर्तन को लाना नहीं चाहते हैं। यह कितनी ही दुखद बात है। मित्रों, हम आगे देखते हैं अध्याय 14 में यरोबाम और रहोबियाम के राज्य का वर्णन और विभाजित राज्यों के राजाओं का घृणित इतिहास जो यहाँ पर आरंभ होता है। उत्तरी राज्य इसराइल में एक अच्छा राजा नहीं हुआ, इसराइल के 19 राजा हुए और सब बुरे हुए। दक्षिण राज्य में 20 राजा हुए, जिनमें से 12 राजा बुरे थे और केवल 8 राजाओं को अच्छा कहा जा सकता है, जिनमें से 5 असाधारण रूप से अच्छे थे। मेरे मित्रों, अध्याय 14 के आरंभ में यरोबाम अपनी पत्नी को भविष्यद्वक्ता अहिय्याह के पास भेजता है, क्योंकि उसका पुत्र रोगी हो गया था। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा संदेश भेजा कि वह बच्चा मर जाएगा और वह यरोबाम पर दंड की भविष्यवाणी भी करता है। तो आइए हम देखें यरोबाम को परमेश्वर का दंड। पहले राजा की पुस्तक 14 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, तू जाकर यरोबाम से कह कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है कि मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इसराइल पर प्रधान किया और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। मेरे मित्रों, अब से आगे दोनों राज्यों के राजाओं के लिए दाऊद आदर्श बनेगा। यरोबाम दाऊद के स्तर से बहुत नीचे गिरा, अतः वह हटाया जाएगा। हम पहले राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय उसके 19 और 20 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, यरोबाम के और काम अर्थात उसने कैसा कैसा युद्ध किया और कैसा राज्य किया, यह सब इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। यरोबाम 22 वर्ष तक राज्य करके अपने पुरखाओं के साथ सो गया और नादाब नाम उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। मेरे मित्रों, रहोबियाम के अधीन यहूदा का ईश्वर त्याग, और आप सोच रहे होंगे कि दक्षिणी राज्य में स्थिति अधिक अच्छी रही होगी, परंतु ऐसा वहां पर भी नहीं था। आइए हम पढ़ें पहले राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय के 25 से 27 पद में, राजा रहोबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं सब की सब उठा ले गया, और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनाई थी सबको वह ले गया। इसलिए राजा रहोबियाम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। मेरे प्रियो, वृद्ध रहोबियाम का पतन हो रहा है, परंतु वह ऊपरी दिखावा कर रहा है। मिस्र का राजा सोने की ढालें ले गया, तो उसने पीतल की ढाले बनवाकर लगवा दी। आगे लिखा है कि वहां गृह युद्ध हुआ। पहले राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय उसके 30 पद में हम पढ़ते हैं, रहुबियाम और यरोबाम में तो सदा लड़ाई होती रही। अब अंत में रहुबियाम की मृत्यु हो जाती है। पहले राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय के 31 पद में लिखा है, और रहुबियाम जिसकी माता नामा नाम एक अमोनीन थी अपने पुरखाओं के साथ सो गया, और उन्हीं के पास दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अबियाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही राजाओं की मृत्यु होती है और दोनों ही राजाओं के पुत्र उनके स्थान पर राज्य गद्दी को संभालते हैं। लेकिन दुखद बात तो यह है कि ये राजा अपने जीवन काल में परमेश्वर के निकटता में नहीं बढ़ पाए। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी जो हम मसीही जीवन जीने की दावा करते हैं, हम सही रूप से अपना जीवन नहीं जी पाते हैं। कई बार परमेश्वर मुझे और आपको मौका देता है और वह चाहता है कि हम उसके कार्यों को स्मरण करें, अपने उन आशीषों को स्मरण करें जिसे उसने हमारे पिताओं, माताओं और हमारे पुरखाओं को दिए हैं। मेरे मित्रों, आज मेरे लिए और आपके लिए एक अवसर है कि हम फिर से प्रभु के निकटता में आए, उन सारी बातों को स्मरण करें और अपने उस बुरे चाल चलन से, उस पापमय जीवन से फिर कर परमेश्वर की ओर आ जाए। वही परमेश्वर जिसने दाऊद को क्षमा किया, आज वह आपको भी क्षमा कर सकता है। क्या आप चाहते हैं कि वह आपको क्षमा करे? क्या आप चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में शांति को प्राप्त करें? यदि हाँ, तो आज प्रभु के पास आ जाएं। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, वह आपको क्षमा कर देंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपने अपने जीवन में प्रभु को आने का अवसर देना आरंभ कर दिया है। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा।